स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, जब तक हमारे सारे प्रयत्नों के ऊपर प्रभु आपका हाथ न हो प्रभु, हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ होंगे प्रभु जी। जब तक आप बात न करें, हमारा बोलना और सुनना व्यर्थ होगा प्रभु। हम चाहते पवित्र आत्मा हमारे मनों का कब्जा ले, हमारे होठों का कब्जा ले प्रभु, ताकि जो कुछ हम यहाँ सुने प्रभु, जो कुछ हम बोले पवित्र आत्मा आपके द्वारा होने पाए, ताकि हम हमारी बड़ाई में नहीं प्रभु जी, अपने बुद्धि ज्ञान में नहीं, पर आपके सामर्थ्य में प्रभु सब कुछ यहाँ करने पाए। प्रभु आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से आमेन। प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह परमेश्वर ने जो वचन मेरे मन में डाला है, ये वो वचन है जो सिखाने के लिए मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये वो वचन है, वो बात है जो मेरे जीवन में अपने खुद से संघर्षों से मैं पिछले दिनों में गुजरा हूँ और सीख रहा हूँ। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपने 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 संतों के द्वारा, अलग अलग जरिए के द्वारा प्रोत्साहन दे रहे हैं, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि इन संघर्षों से जो मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हुए कोई होंगे जो उस संघर्षों से या उन बातों से भी गुजर रहे होंगे। और आज जिस बात के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है कि परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होना। इंग्लिश में कहते हैं कि हेल्पलेस डिपेंडेंस ऑन गॉड। और एक वचन जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन 3:5, जो बचपन से हम जानते हैं, लेकिन और एक बार उसको पढ़ना चाहेंगे। नीति वचन उसका 3:5, प्रोवर्ब्स 3:5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर बहुत ही साफ तरीके से कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना। बार बार परमेश्वर ने हमको यही पुराने नियम में या नए नियम में बार बार ये दिखाने की कोशिश की है कि कई बार मसीह में आने के बाद, उन आशीषों को हम प्राप्त करने के बाद, हमारा एक मानसिकता या हमारा स्वभाव कई बार अपने खुद पर निर्भरता पर आगे बढ़ने लगता है। और प्रभु ने कई हालातों से इस चीज़ को बताया कि परमेश्वर पर निर्भर होने की बजाय कई बार अपने स्रोतों के ऊपर, संपत्ति या पैसों के ऊपर, अपनी कुशलता और ज्ञान के ऊपर निर्भर होने लगता हूँ, और तब परमेश्वर कार्य करना बंद हो जाता है। जब मैं अपनी कुशलता पर निर्भर होता हूँ, सबसे पहला जो होता है, परमेश्वर वहाँ रुक जाता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को जो टूटे हृदय के, उन्हीं की सहायता कर सकता है। और परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम अपने स्किल्स या अपनी स्ट्रेंथ जो है, अपनी कुशलता या अपने बल पर भरोसा रखने से बढ़कर परमेश्वर पर हर समय हर चीज़ के लिए, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो असंभव हो मेरे लिए या मैं कर सकता हूँ, उन हालातों के ऊपर परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखूँ। ये बहुत कहना बहुत आसान होता है कि जब लगता है कि प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, लेकिन जब हालातों में मेरा जो रिस्पॉन्स जो है वो उस पर तय करता है कि सच में क्या मैं परमेश्वर पर डिपेंडेंट हूँ या नहीं। और एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा, नीति भजन संहिता उसका 20:7, भजन संहिता 20:20, ये दाऊद का लिखा हुआ वचन है, और वो 7 में कहता है, Psalms 20:7, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। यहाँ पे दाऊद राजा, जो खुद घोड़े सवारों और बहुत ही अपने सामर्थ्य में सबसे महान, ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसको वो हरा नहीं पाया वो समय पर, बहुत ही अपने आप में एक शूरवीर योद्धा है, लेकिन फिर भी वो कहता है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। परमेश्वर हमारे मसीह जीवन में चाहता है कि हम हमेशा इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर है जो हमारे जीवन को चलाने वाला है, परमेश्वर है जो हमारा रथ और हमारा घोड़ा है, परमेश्वर ही हमारे हर एक युद्धों में से हमें विजय देने वाला है। कई बार हमारे लिए एक टेम्पटेशन हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के बाद हमारा एक सामान्य जीवन बन जाता है, उसके बाद हम कई बार परमेश्वर को बाहर निकाल देते। बचपन में एक स्किट मैंने देखा था कि कार में यीशु मसीह ड्राइविंग सीट पे होता है, फिर उसके बाद वो साइड की सीट पर चले जाता है, फिर पीछे की सीट पर, फिर वो उसको बाहर। और कई बार मेरे जीवन में भी देखते हूँ कि प्रभु, जब ज़रूरत के समय पे यीशु, हमेशा मैं चाहता हूँ कि मेरे ड्राइविंग सीट पर बैठे, लेकिन जब आशीष आना स्टार्ट हो जाती है, जब स्रोत, जब सारी चीज़ें अच्छी होने शुरुआत हो जाती है, तब मैं परमेश्वर को पीछे या और भी उसको बाहर का स्थान कर देता हूँ। क्योंकि दाऊद कहता है कि परमेश्वर पर मेरा भरोसा है रथों और घोड़ों से बढ़कर। ये मैं अपने जीवन में सीखना चाहता हूँ हर समय में कि प्रभु चाहे हालात अच्छे हैं आज, चाहे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आज मुझे मिल रहा है, चारों तरफ से शांति दिखाई देती है, कहीं पर भी कुछ भी दर्द या संकट नहीं, लेकिन उस हालात के अंदर भी प्रभु मैं हमेशा ये मानना चाहता हूँ कि प्रभु मेरा भरोसा रथों और घोड़ों से बढ़कर आपके ऊपर है। संसार के अंदर हम देखते हैं कि एक अलग ही स्टैंडर्ड है, एक अलग वैल्यूज़ पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, यू नो यू कैन डू एनी थिंग। जब अपने आप पर भरोसा रखोगे, आप अपने आप की मदद करोगे, तब परमेश्वर भी आपकी मदद करेगा। ये संसार का तरीका है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का तरीका ये है कि जब हम अपने आप की सहायता नहीं कर पाते हैं, तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जब तक हमारे हाथ पैर हम अपने सामर्थ्य अपने बुद्धि से चलने की कोशिश करते हैं, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं कर पाता है। और वही मूसा के जीवन में देखते, मूसा को लगा कि 40 साल तक बहुत ही सामर्थी और बलवान और ज्ञान उसने प्राप्त किया है, लेकिन परमेश्वर उसके वहाँ पर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्तर पर आए जहाँ पर हम कहें कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। यूहन्ना 15 में लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर बार बार मुझे याद दिलाता है, अगर मैं इसको मेरे थीम वचन मेरे जीवन का अगर बनाऊं कि परमेश्वर से अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर दूसरी तरफ से देखने जाए तो परमेश्वर से अलग होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, हम काम करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये वचन कहता है कि वो डिपेंडेंसी, वो स्वभाव, मानसिकता कि प्रभु यहाँ तक मैं कर भी पाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ आपकी ज़रूरत है। यशायाह 31 और उसका एक वचन बहुत ही मुझे प्रोत्साहित किया। यशायाह उसका 31 अध्याय यशायाह 31:1, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते, न यहोवा की वे खोज करते हैं। यहाँ पर इसराइलियों के बारे में कहा गया है कि वे रथों पर भरोसा करने लगी। इसराइली जो थे वो मिस्र से निकले थे और मिस्र के अंदर बहुत ही सामर्थ्य वेपन जो रथ थे, वहाँ के घोड़े, वहाँ के रथ बहुत ही सामर्थ्य और बहुत ही बलवान थे, युद्ध में लड़ने के लिए उनको विजय देते थे। और ये इसराइलियों ने देखा कि कैसे मिस्रियों ने विजय पाया। और वही वो हर बार जब परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति से और सहायता से युद्ध को जीतते थे इसराइली, तब उनको हमेशा लगता था शायद कि उनको घोड़ों ने, उनके रथों ने उनको जिताया है। और परमेश्वर उनको बार बार यहाँ पे स्मरण दिलाता है कि घोड़ों का आसरा करते और रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत है और वे अति बलवान हैं, पर इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते। क्या यह वचन हमारे लिए भी आज लागू नहीं होता है? वो इसराइलियों के लिए लिखा गया था, लेकिन कई बार जब हम अपने आप को बलवान समझने लगते हैं, अपने आप को बुद्धिमान और संपत्ति में हर जगह से अपने आप को एक उच्च कक्षा में अपने आप को सोचने लगते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि तू इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करता है। परमेश्वर पर हम देखना बंद कर देते हैं। वो घोड़े और सवार जो मिस्र में हमने देखे थे, जो संसार को दिखाता है, वो कई बार मुझे बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा दिखने लगता है और लगता है कि इन्हीं के द्वारा मैं विजय प्राप्त करता हूँ। और हम सबों को ये वचन पता है, व्यवस्था विवरण 8 उसका 12 वचन, जहाँ पे एक चेतावनी परमेश्वर ने इसराइलियों को दी थी, वो आज हम सबों के लिए भी लागू होता है। व्यवस्था विवरण डेटरनॉमी चैप्टर 8 उसका 12 वचन, ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैल भेड़ बकरियां बढ़ती हो, तेरा सोना चांदी तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो कुछ जो तुझको दासत्व से घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया। परमेश्वर बार बार इसराइलियों को याद दिलाने की कोशिश करता है कि हाँ मैं आपको आशीष दूंगा और नहीं भी, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इन सब बातों के ऊपर हम निर्भर न रहते हुए परमेश्वर पूरी तरह से निर्भर हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक निर्णय जो मैं मेरे जीवन के लेता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ये निर्णय ले सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि फिर भी मैं उसके पास जाकर उसके पास एक छोटे बच्चे के समान कि प्रभु इसमें मुझे क्या करना है, प्रभु आप मुझे बताइए। कई बार होता है कि मैं परमेश्वर से आगे चलने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन परमेश्वर कहीं दूर दूर मुझे ये चाहता है कि मैं नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में दूं। और इसका नतीजा ये होता है कि मैं चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं परमेश्वर पर निर्भर नहीं होता, उसका पहला जो जो परिणाम जो होता है, जो परमेश्वर भरोसा नहीं रखते, कि मैं चीज़ों को, व्यक्तियों को, अपने हालातों को खुद से नियंत्रण करने की कोशिश करता हूँ और परमेश्वर को नियंत्रण सौंपने की बजाय सारी चीज़ों को अपने समय में, अपने तरीके से करने की कोशिश मैं करता हूँ। और प्रभु बार बार यहाँ पर याद दिलाते हैं कि मुझे नियंत्रण परमेश्वर को सौंपना है, मुझे पूरा पूरा जो अधिकार है परमेश्वर को सौंपना है। और जब मैं नियंत्रण परमेश्वर को नहीं सौंपता हूँ तो उससे फिर क्रोध करना या इरिटेशन होना या पूरी तरह से ब्लेम करना या रेस्ट नहीं होना, वो सारी चीज़ें मैं अपने जीवन में देख पाता हूँ। इसलिए परमेश्वर से मैं इस चीज़ को मैं सीख रहा हूँ इन दिनों के अंदर कि प्रभु तुझ पर पूरी तरह से निर्भर होना सिखा, कैसे मैं वो निर्भरता में आगे बढ़ सकूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आज अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन फिर भी वो निर्भरता मेरे आत्मिक जीवन में प्रतिदिन बढ़ती जाए। यहाँ तक मुझे लगे कि मैं चीज़ों को अपने आप से कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना है। राजा दाऊद जो है उसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है कि यहाँ तक वो बहुत ही बड़ा महायोद्धा था, लेकिन फिर भी छोटे छोटे युद्ध करने के लिए, बड़े बड़े युद्धों के लिए तो हर कोई जाकर पूछता है प्रभु मैं नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन छोटे छोटे युद्धों में परमेश्वर से जाके पूछता हूँ प्रभु मैं जाऊँ। एक बार सिकलग के अंदर पूरी तरह से उसके बच्चे और संपत्ति सब कुछ वहाँ लेकर गए, लोग पत्थरवाह करे, लेकिन परमेश्वर के पास जाकर पूछता है और सामर्थ प्राप्त करता है। और परमेश्वर मुझे सिखाते हैं कि वही चीज़ मेरे जीवन के अंदर चाहिए कि मैं परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करने के लिए उसके पास जाऊँ, उससे बुद्धि और ज्ञान, यहाँ तक कि मैं कर सकता हूँ फिर भी मुझे उसकी अगुवाई की, उसके बुद्धि और ज्ञान की। वचन कहता है 32 भजन में कि मैं तुझे सम्मति देता हूँ, तेरी अगुवाई करूँगा। और उस परमेश्वर की हमें निरंतर प्रतिदिन ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो परमेश्वर इन दिनों में सिखा रहे थे कि निरंतर इस एहसास में जीना कि मुझे परमेश्वर पर निर्भर होना है। मुझे एहसास नहीं होता, ये ज़रूरत नहीं लगती कि मुझे परमेश्वर पर निर्भर होना है। मैं प्रार्थना ज़रूर करता हूँ, लेकिन उस नीड के कारण, उस ज़रूरत को महसूस नहीं करता हूँ कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। गीत के अंदर लिखा है कि किसी ने लिखा है कि आई नीड यू लॉर्ड एज ऑक्सीजन, आई वॉन्ट टू ब्रीद यू इन, आई वॉन्ट टू ब्रीद यू आउट। एक ऑक्सीजन के समान प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, अगर वो आप नहीं हैं तो मैं नहीं जी पाऊँगा। और मेरे जीवन में शायद परमेश्वर वो स्थान पर आज नहीं जहाँ पर मैं प्रभु को कह सकूँ कि प्रभु मुझे एक ऑक्सीजन के समान आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत के स्थान पर मैं प्रभु के पास जाता हूँ, लेकिन भले समय में जब मैं अपने आप को मैनेज कर पाता हूँ मैं दूर चले जाता हूँ। परमेश्वर बताता है कि मुझे हर समय उस अवेयरनेस में, उस सेंस ऑफ नीड में रहना है कि प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं, यूसुफ उसका 41 अध्याय, सॉरी उत्पत्ति उसका 41, जेनेसिस 41 चैप्टर, उसका 51 और 52, जेनेसिस 41:51 and 52। यहाँ पे यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे हालातों से वो होकर गुजरा, कठिन, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया पोतीफर के घर में, उसको गलत उसके ऊपर दोष करके कैद खाने में रहा, कितने सालों तक एक कठिन हालातों से गया। और फिर बाद में कुछ सालों के बाद परमेश्वर ने एक ऊंचे पद पर यूसुफ को रखा, लेकिन उसका स्वभाव सीखने जैसा है हमारे आत्मिक जीवन के अंदर। वो यहाँ पर अपने बच्चों का नाम रखता है और उस बच्चों के नाम के अर्थ को हम देखेंगे 41:51 और 52 में लिखा है, यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनुष्य रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। और दूसरे बच्चे का नाम उसने यह कह के रखा, एप्रेम रखा, कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। हम देखते हैं कि यूसुफ चाहता तो वहाँ पे घमंड से भर सकता था, लेकिन वो अपने आप को नम्र रखने के लिए यहाँ पे दो नाम अपने बच्चों को वो कह रहा है, मनुष्य कि परमेश्वर ने मेरे सारे क्लेश को दूर किया, प्रेम मेरे सारे दुख को दूर किया है। वो अपने सामने से रिमाइंडर को रखना चाहते हैं कि जब कभी उसके सामने ऐसा टेम्पटेशन आता है कि वो अपने आप को देखे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इतने इजिप्ट का, तब उसको याद आए कि परमेश्वर ने उस क्लेशों में से मुझे बाहर निकाला है, परमेश्वर ने इस दुख में से मुझे बाहर निकाला है, मुझे उस पर ही निर्भर होना पड़ेगा। जैसे उस कैदखाने में निर्भर था, भले आज इस प्रधानमंत्री के पद पर मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर ही। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर पर आधारित तब हो पाएंगे जब हमारे और मेरे जीवन में मैं ऐसे मनाशे और ऐसे अप्रेम को रखूँगा। कई बार परमेश्वर के उपकारों को भूल जाता हूँ, कई बार परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत कामों को, बड़े बड़े जोखिम, ऐसे डेंजर्स थे प्रभु ने वहाँ से निकाला, लेकिन मैं बहुत जल्दी आसानी से भूल जाता हूँ कि प्रभु और भूल जाने के कारण परमेश्वर पर निर्भरता मेरी बहुत ही कम या ना की समान हो जाती है। परमेश्वर चाहता है कि उस मनाशे को, उस प्रेम को मेरे जीवन के अंदर हमेशा याद रखूं। हो सकता है हमारे जीवन के अंदर उन तकलीफों को, उन हालातों को हम अप्रेम और उस विजय को, उस अप्रेम और मनाशे का नाम दे सकते हैं। हम देखते हैं राजा शाऊल और सुलेमान के जीवन के अंदर भी परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। उनके जीवन में कोई अप्रेम या मनाशे नहीं था, इसलिए बहुत आसानी से प्रभु से वो दूर हो गए। वो भी अपने जीवन के अंदर शायद उस अप्रेम मनाशे के समान परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को याद कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ परमेश्वर ने मुझे इस वचन से आशीष दिया कि प्रभु उन समय को याद करती, कहाँ गिरा था, कहाँ से प्रभु ने तुझे उठाया, शून्य की हालात से प्रभु ने तुझे यहाँ पे लेकर आया, जब तू पाप में पूरी तरह से फंसा हुआ था, परमेश्वर की दया तुझे यहाँ पर लेकर आई, और वही है जो आगे तुझे चलाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर हमारी सहायता करे। और एक वचन मैं बांटना चाहता हूँ कि उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय अंत में, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसका 16 और 17। ये वचन मैं पिछले सप्ताह में ब्रदर संदीप पूनन को सुन रहा था, उससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला मेरे जीवन के अंदर कि परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में कार्य कर रहा है इन दिनों के अंदर। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, पर भले या परमेश्वर आदम और हवा से कह रहा है कि पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इस भाई ने जब इस वचन को बताया, मुझे समझ नहीं आता था कि ये भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष क्या होता है, लेकिन जब उन्होंने बताया कि दो प्रकार के वृक्ष था, एक जीवन का वृक्ष था और एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष रखा था वहाँ पर, और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि जीवन के वृक्ष में से आपको खाना है, उसके फल खा सकते हो, लेकिन भले बुरे का, उन्होंने बताया कि जो भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसमें क्या खराबी थी, अगर मुझे पता चल जाता है बुरा क्या है भला क्या है तो उसमें पाप क्या है, मैं अच्छे से आगे से सावधानी बरतूंगा, उसमें कोई पाप नहीं था। ऐसा नहीं लिखा कि तुम्हें व्यभिचार के फल उस पेड़ से फल नहीं खाना है, घमंड के उससे फल नहीं खाना है, पाप का कोई फल नहीं, वो पेड़ नहीं था, भरे और बुरे का ज्ञान का वो पेड़ था। उन्होंने बताया कि परमेश्वर हमारे जीवन से अपेक्षा रखता है कि हम उसके जीवन से, जो वृक्ष है जहाँ से जीवन बहता है, उसमें से हम प्रतिदिन खाएं, और जिस दिन हम उस भरे और बुरे ज्ञान का अर्थ समझने लगते हैं उसी दिन हमारी निर्भरता परमेश्वर पर कम हो जाती है। हम सोचने लगते कि मैं अपने जीवन को चला सकता हूँ, अब मुझे भला क्या है बुरा क्या है, अब सुंदर क्या है गंदा क्या है सब कुछ पता लग, अब मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं। इसलिए परमेश्वर का जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर आज हमें वही कि जिस दिन हम अपने आप पर निर्भर होने की कोशिश करते हैं उसी दिन हमारा आत्मिक मृत्यु आरंभ हो जाता है, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम उस जीवन के वृक्ष से खाएं जहाँ पर हमें प्रतिदिन वो जीवन मिलता है हमारे अंदर। जैसे वचन कहता है कि जो मुझ में से खाएगा, यीशु ने कहा, वो कभी भी भूखा ना होगा, जीवन के झरने नदियाँ उसके अंदर से बहने निकलेंगी। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो। एक उदाहरण अंत में मैं कहना चाहूँगा कि पापों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भी कई बार अपने खुद के प्रयत्नों के ऊपर निर्भर होकर मैं विजय प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। अपना खुद का मनोबल है, अपने खुद की सामर्थ्य है, या मैं ऐसा करूँगा तब पाप से विजय पाऊँगा, और उससे मुझे कई बार विजय नहीं मिलता है। मुझे वहाँ पर भी परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना है। परमेश्वर बार बार सिखाते हैं कि कितनी भी मैं अपने ताकत से, सामर्थ्य से प्रयत्न करूँ कि मैं इस पाप पर विजय प्राप्त करूँगा, मैं नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर पर निर्भर नहीं हूँ। वो एक ब्रिज के समान है, उस ब्रिज के नीचे से एक बहुत ही बहती हुई, इतनी जोरों से बहती हुई नदी जा रही है, और परमेश्वर मुझे कहता है कि किरण इस नदी को आपको पार करना है, और उस नदी को मैं अपने सामर्थ्य से पार नहीं कर सकता। वो नदी के अंदर शायद मेरे घमंड बह रहा है, उस नदी के अंदर शायद लस्ट या मेरी वासनाएं हैं, उस नदी के अंदर बह रहा है किसी के बारे में बुरा कहना या क्रोध बह रहा है, और प्रभु कह रहा है इस नदी को आपको पार करना है। और मैं बहुत कोशिश करता हूँ उस नदी के पास जाने के, लेकिन मैं नहीं हो पाता है। और फिर होता है कि मैं अपने बुद्धि और ज्ञान को उपयोग करने के बाद अपने शरीर में वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ, और मैं बहुत अपने आप को बलवान बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि इस नदी को अपने प्रयत्नों से मैं पार कर पाऊँ। और जैसे मैं पार करने की कोशिश करता हूँ, मैं पार भी कर लेता हूँ कैसे भी करके, और फिर मुझे लगने लगता है कि मैं अपने बल से उस नदी को मैंने पार किया, उस बल से मैंने विजय को प्राप्त किया है, मेरे गंदे विचारों के ऊपर, मेरे क्रोध के ऊपर, मेरे बुरे पापों के ऊपर। लेकिन परमेश्वर के पास जब मैं आता हूँ, परमेश्वर कहता है कि मैंने ये तय नहीं किया था, मेरी योजना ये नहीं थी कि तू अपने बल से इस नदी को पार करे। मैं चाहता था कि ऑलरेडी उस वो ब्रिज वहाँ पर मैंने बनाया था जिसका नाम यीशु मसीह है, उस पर तू निर्भर होकर उस नदी को पार करे। और यही गलती मैं बार बार करता हूँ, और नदी पार करने के बाद मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको कसरत करना है, आपको ऐसा मनोबल करना है, तब आप अपने आप पर निर्भर होके, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और परमेश्वर आज यही बताना चाह रहा है मेरे जीवन में, हम सबों को प्रोत्साहित करना चाहता है कि कई बार उस ब्रिज का इस्तेमाल न करते हुए अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ का इस्तेमाल बार बार करते हैं, और कई बार हम पार नहीं कर पाते, कई बार हम हार जाते हैं, कई बार 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 गिर जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जिसने सब कुछ पूरा किया, वो वचन कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मुझे छोड़ और कोई पिता के पास नहीं आ सकता। वही मार्ग है, उस पर निर्भरता रखकर ही मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ पाप के ऊपर। अगर मैं अपने प्रयत्नों पर आज भी निर्भर हो रहा हूँ तो मेरा मसीह जीवन पूरी तरह से हार से, पापों से भरा हुआ आज भी रहेगा। मैं इस प्रोत्साहन को अपने आप के लिए भी लेना चाहता हूँ कि मैं हर समय परमेश्वर पर निर्भर हूँ, चाहे मेरे निर्णयों के अंदर, मेरे कामों के अंदर, या मेरे पाप के साथ विजय के अंदर। मैं हर बात के अंदर चाहता हूँ कि प्रभु, नए नियम के अंदर जो प्रभु ने कहा कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन है, पाप की प्रभुता तुम पर न होगी, तब न होगी जब हम अपने आप पर निर्भरता छोड़ देंगे, अपने स्रोत के ऊपर निर्भरता छोड़ देंगे और परमेश्वर पर निर्भर होना आरंभ करेंगे। परमेश्वर हम सभी को सहायता करे और ये एहसास दिलाता रहे कि हमें परमेश्वर की जरूरत सबसे अधिक, सबसे बढ़कर हर हालात में है। प्रभु हम सबको आशीष दे।
I praise God for what I've heard.
प्रभु की स्तुति हो जो वचन हमने सुना।
I was just reading Acts and Acts 2 and 3 and I was applying stuff, all the verses to my life.
और प्रेरितों के काम दूसरा तीसरा अध्याय में पढ़ रहा था और उन सारे वचनों को अपने जीवन में अपनाना मैं चाहता हूँ।
Before that, when we are unwell and we have our stomach's upset, even whatever we eat, we throw it out or we, you know, vomit it out.
और जब हम अच्छे, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, हमारा पेट में गड़बड़ होती है, जो कुछ हम खाते हैं उसको पूरी तरह से हम बाहर निकाल देते हैं।
I apply that to my own life. I was just thinking about it. When I come to church, I, you know, intake certain things, and when I go out, I just, you know, vomit out and keeping the same, you know, the sin inside me.
और यही मेरे जीवन के अंदर मैं लागू करता हूँ। जब मैं कलीसिया में आता हूँ, सुनता हूँ, अपने अंदर लेता हूँ, जब बाहर निकलता हूँ उसको पूरी तरह से उल्टी कर देता हूँ, और बाद में जो पाप जो था उसी को फिर अपने ऊपर लेकर चलता हूँ।
Why? Because I'm not taking sin as serious as God sees it.
इसलिए क्यों ऐसा है? क्योंकि मैं पाप को जैसे परमेश्वर गंभीरता से लेता है, वैसा मैं उस पाप को नहीं लेता हूँ।
Why? Because I've not seen the loving face of Jesus Christ on the cross of Calvary.
और क्योंकि क्यों मैं ऐसा करता हूँ? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को उस कलवरी क्रूस के ऊपर उसका प्रेम का चित्र नहीं देखा है।
Why? Because I've not seen his compassion when he said that I forgive you.
और क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने उसकी उस करुणा को, जब वो कहता है कि मैंने तुझे माफ किया है, मैंने नहीं देखा है।
And we put Christ on the cross of Calvary. And I put Christ cross of Calvary every single day of my life.
और प्रतिदिन मेरे जीवन के अंदर यीशु मसीह को मैं बार बार क्रूस पर चढ़ाता हूँ।
By sinning, by not intaking what is the right things, which is, you know, given by our brothers and sisters in church or what, you know, God talks about, God talks to us to His Word of God.
और कलीसिया में जो वचन भाई बहनों के द्वारा जो दिया है उसको ठीक तरह से नहीं लेना और पाप करना उसके द्वारा।
We all know Jesus came to die for his people, the Jews and also Gentiles.
और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह यहूदी लोग जो उसके लोग थे और अन्य जाति उनके लिए मरने के लिए संसार में आया।
And as Peter and John were walking in Jerusalem in Acts 2.
और प्रेरितों के काम दूसरे प्रेरित यूहन्ना और पत्रस उस सड़कों पर चल रहे थे।
In Acts 3, Peter and John healed the lame man.
और यहाँ पर प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय में एक लंगड़े भिखारी को पत्रस और यहूना ने चंगा किया।
People seeing that they were amazed.
और यहाँ पे लिखा है कि लोग बहुत अचंभित हो गए।
They, you know, they started coming to Peter and John, and you know, in verse 11. Full of amazement, the last part says.
और यहाँ पे तीसरा अध्याय 11 वचन में लिखा है कि वे लोग बहुत आश्चर्य करने लगे।
But Peter and John says, no, we have not done anything.
और पत्रस यूहन्ना कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया।
It is Jesus Christ who has healed the lame man.
वो जो यीशु मसीह है जिसने इस लंगड़े भिखारी को चंगा किया है।
The same Jesus Christ who you put to death on the cross.
और वही यीशु मसीह जिनको आपने उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया।
Verse 13-14 it says that you disowned his name and disowned him in the presence of Pilate, and you decided to release the other sinner. Barabbas, and you disown the holy and the righteous one and ask for a martyr to be granted to you.
और 14 वचन में कहता है कि तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए.
And put to death the prince of life, the one who God raised from the dead, a fact to which we are witnesses. Verse 15.
और 15 वचन, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया और इस बात के हम गवाह है.
And I was just looking at my life and thinking all the, you know, wonderful things has happened to me so many years, and do I really be amazed by it, that, you know, it's by my own efforts or someone else's efforts, you know, that I'm amazed, or is it because of Jesus Christ?
और जो पिछले सालों को देखता हूँ कि कैसे अद्भुत कार्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हैं, तो उस उन चीज़ों को देखकर क्या मैं आश्चर्यचकित होता हूँ कि ये मेरे प्रयत्नों से ही है या पर और औरों के प्रयत्नों से.
And when I have this pride in me, I disown Jesus Christ and put him again to the cross of Calvary, and my sin stays with me.
और जब ऐसा घमंड मुझ में आ जाता है, तब बार-बार मैं यीशु मसीह को और एक बार उस क्रूस पर क्रूसित करता हूँ.
And verse 26, verse 2, for you first God raised up a servant and sent him to bless you by turning each one of you from your wicked ways.
और 26 वचन, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे.
Says for you first, for all the Jews first, for me first. I am the chosen one. Jesus, you know, God chose me before I was born. For me first, Jesus Christ, you know, God sent his own son to die for.
यहाँ पे परमेश्वर ने अपने खुद के लिए, जो यहूदी लोग थे उनके लिए, मेरे लिए जो चुना हुआ हूँ, वो परमेश्वर ने मेरे लिए यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर मरने के लिए भेजा.
But this the Jews did not, you know, understand, and you know, they were amazed by what Peter and John and Peter had, Peter and John had, you know, all the miracles they had done.
और पत्रस और यूहन्ना ने जो चमत्कार अचंभित तो हुए, लेकिन वो समझ नहीं पाए.
And when I look at my life, I too do not understand, you know, the seriousness of Jesus Christ dying on the cross.
और ये मेरे जीवन में लागू करता हूँ कि मैं भी यीशु मसीह जो क्रूस पर मेरे लिए मारा गया उसकी गंभीरता को नहीं लेता हूँ.
Why did he die on the cross? Because I have sinned.
वो क्यों मारा गया क्रूस के ऊपर? क्योंकि मैंने पाप किया है.
And when I take it seriously, when I look at his loving face, I will never sin again.
और जब मैं उसके प्रेमी उस चेहरे को देखूंगा तो और फिर मैं पाप नहीं करूंगा.
In verse in 4 verse 12 it says salvation is only from Jesus, only from God.
और प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि उद्धार केवल परमेश्वर से ही, यीशु मसीह से ही है.
And there's no one under heaven that has been given among men by which we have been saved.
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें.
There are no other gods on earth, you know, through which people have been saved.
और ऐसे कोई देवता नहीं जिसके द्वारा किसी को उद्धार मिले इस धरती पर.
And there is no salvation from any of these gods, you know, which they have given salvation granted to any of the people who are following the other religions and other gods on this earth.
और जो इस धरती के ऊपर और धर्म और देवताओं की उपासना करते हैं, उनके द्वारा उद्धार नहीं है.
And I take it seriously to my, you know, to my life that to get salvation, Jesus is the only way, the truth and the life.
और ये मेरे जीवन में गंभीरता से लेना चाहता हूँ कि उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है.
For that I have to repent and make my life straight.
और इसके लिए मुझे पश्चाताप करना है, मेरे जीवन को सीधा करना है.
Repent and let each one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Verse chapter 2 verse 38.
और दूसरे अध्याय का 38 वचन में लिखा है, पत्रस ने कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे.
Jesus is a loving father who, you know, who will never leave you nor forsake you. He is the one sitting on the throne, and you know, with open arms, like, come, I will help you, I will save you.
और परमेश्वर सिंहासन के ऊपर प्रेम से बैठा हुआ है, वो कभी हमको छोड़ेगा नहीं, लेकिन हमेशा अपने हमको अपनाएगा.
But until we cut the root of sin, we will never be, you know, we'll always vomit out the word of God or anything that, you know, comes in our life.
जब तक कि उस पाप का जो जड़ है जिसको हम काट नहीं देते, तब तक ये वचन को हम सुनते रहेंगे और उसकी उल्टी करते रहेंगे, वो हमारे अंदर नहीं बना रहेगा.
And I take it serious as God looks at sin, I want to take it as serious as that, you know, sin as serious as that.
और पाप को मैं उस प्रकार देखना चाहता हूँ गंभीरता से जैसे परमेश्वर पाप को गंभीरता से देखता है.
Praise God.
प्रभु की स्तुति हो.
प्रभु का धन्यवाद हो. पिछले दिनों एक वचन मैं पढ़ रही थी जिसके द्वारा सच में मुझे लगा कि एक वार्निंग वर्ड्स है मेरे लिए. गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 7 ऑनवर्ड, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रभु का धन्यवाद। इसमें लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्या ये हो सकता है कि मैं जो एक विश्वासी हूँ, जो प्रभु को जानती हूँ, प्रभु के वचन को पढ़ती हूँ और चर्च भी आती हूँ, क्या हो सकता है कि मैं एक धोखे में रहूँ और परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाने वाली ठहरूँ? ये पॉसिबल है? अगर सच में अगर मैं अपने जीवन को डेली एग्जामिन ना करूँ कि मैं क्या बो रही हूँ। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, गॉड इज़ नॉट मॉक। हम कैसे परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाने वाले लोग बन सकते हैं? हम बहुत सारे वचन सुनते हैं, बहुत सारी परमेश्वर की वार्निंग है बाइबल में हमारे लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बाइबल में हमारे लिए कि कैसे उन्होंने एक अच्छा स्टार्टिंग किया और कैसे जब उन्होंने अपने प्रेजेंट की ओर ध्यान नहीं दिया कैसे उनका एंडिंग बहुत ही ख़राब हुआ और उन्होंने विनाश की कटनी काटी। पिछले संडे ही हमने वचन सुना कि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि हमने शुरुआत कैसे की है, पर ये ज़रूरी है कि हमारी एंडिंग कैसी हो रही है, हम आज किस दिशा में हैं। जो 10 साल पहले मैं थी सिर्फ वही बातें मैं कर रही हूँ, या आज मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो मुझे देखना है। अगर मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ कि आज की मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, तो मैं वो इंसान हूँ जो धोखे में जी रही हूँ और परमेश्वर को ठट्टे में उड़ा रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर की वार्निंग मेरे पास है, परमेश्वर का वचन मेरे पास है और फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु जो मैं कुछ बोल रही हूँ उससे मैं अच्छा ही फल काटने वाली हूँ, तो परमेश्वर का मैं मजाक उड़ा रही हूँ। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर सेकेंड कुरिन्थियों चैप्टर 13 वर्स 5, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। वचन में साफ लिखा है कि हमें अपने आप को जांचना है। ज़रूरी है कि निरंतर हम डेली अपने आप को देखें कि क्या सच में यीशु मसीह मेरे जीवन से दिखता है, क्या सच में मैं परमेश्वर की जो वार्निंग है उन्हें बहुत ही गंभीरता से ले रही हूँ। जैसे गलतियों में लिखा है कि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि मैं डेली मेरी लाइफ को एग्जामिन करूं। जैसे एक फार्मर जब एक सीड को एक किसी ज़मीन पर डालता है तो वो डेली उसे खाद देता है, उसमें पानी डालता है, डेली एग्जामिन करता है, और जब वो पेड़ बढ़ रहा होता है तो बहुत सारी दवाइयाँ भी डालता है कि कहीं कीड़े इस फसल को ना खा ले, ये बहुत सारी चीज़ें वो उन चीज़ों उस पेड़ को बढ़ाने के लिए करता है। वैसे ही बहुत ज़रूरी है कि ये जो मसीह की ज़िंदगी है, मसीह की लाइफ है, क्या मैं उसको डेली एग्जामिन कर रही हूँ? क्या मैं उसको देख रही हूँ कि प्रभु मैं सोच तो रही हूँ कि ये एक अच्छा फल ला रहा है, बट कहीं ये कांटे तो नहीं ला रहा है, कहीं मैं शरीर के लिए तो नहीं बो रही हूँ? इसलिए लिखा है कि धोखा ना खाओ। हम धोखे में तो नहीं जी रहे हैं, हम सोच तो रहे हैं कि हम मसीह में हैं, पर क्या मेरे फल सच में आत्मा के फल हैं? कौन से फल आज मेरे जीवन के द्वारा बो रहे हैं? क्या मैं शरीर के लिए बो रही हूँ कि मैं आत्मा के लिए बो रही हूँ? मैं सोचती हूँ कि आम का पेड़ निकले पर मेरे जीवन में मैं करेले का या कड़वी चीज़ों को बो रही हूँ, तो धोखे में ना रहो, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तो बार बार परमेश्वर ये वार्निंग हमें देता है कि हमें चेतावनियों पर ध्यान देना है। आज मेरे जीवन में मैं किन बातों को बो रही हूँ, उन बातों पर मुझे ध्यान देना है। और जैसे किरण ने बांटा कि परमेश्वर पर पूरी तरीके से मुझे डिपेंड रहना है। जब मैं प्रभु पर डिपेंड रहूँगी, प्रभु मेरे साथ मिलकर उस पेड़ को बोएगा, मेरे जीवन को परमेश्वर बढ़ाएगा, क्योंकि इससे प्रभु का वायदा है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा, और वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा जो मैंने तुमसे कही है। मैं अपनी सामर्थ से, अपने बल से वो अच्छा पेड़ नहीं उगा सकती, मैं अपनी सामर्थ से एक आत्मा का पेड़ नहीं उगा सकती, क्योंकि जैसे वचन में पौलुस कहता है कि मुझ में कोई अच्छी बात है ही नहीं, जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही करता हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ। पर धन्य है परमेश्वर जो हमें सामर्थ देता है, जो हमें नया बनाता है। और जैसे बाइबल में इसमें आगे के वर्सेस में लिखा है चैप्टर 6 वर्स 14 पर के सेकंड पार्ट, केवल हमारे प्रभु यीशु के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया, तो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ये संसार जो आज हमें बहुत अच्छा लगता है, संसार की बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, वो कैसे उस क्रूस पर चढ़ाया जाएगा जब तक कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में नहीं उड़ेला जाएगा, तब तक कि प्रभु खुद मेरे भीतर काम ना करे, ताकि जो ये सारी चीज़ें जो हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, एक बार ब्रदर संतोष ने बताया था कि क्यों हमें संसार की चीज़ें इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमारे भीतर पूरी तरीके से नहीं भर पाया। क्यों हमें सारी चीज़ों की ओर हम इतने ज़्यादा टेम्प्टेड होते हैं, क्योंकि हम सच में प्रभु से उतना प्रेम नहीं करते, इसलिए सारी चीज़ें हमें अपनी ओर खींचती और खींचती। क्यों ये स्ट्रगल हमारे लाइफ में हम बार बार देखते हैं, क्योंकि अब तक परमेश्वर का प्रेम पूरी तरीके से हमारे हृदयों में नहीं उड़ेला गया है। बट प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का वचन बार बार हमसे कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमारे लिए आशा है कि अगर हम प्रभु के पास जाएंगे, बाइबल में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वचन है प्रभु के कि जो काम मैंने तुझ में आरंभ किया मैं ही उसे पूरा करूँगा। तो परमेश्वर की वार्निंग है, पर परमेश्वर के प्रोमिसेस भी है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सकरा रास्ता ज़रूर रखा है, पर तुम्हें उस पर अकेले नहीं चलना है, मैं खुद अपनी पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, तुम्हें सिर्फ मुझ पर निर्भर होना है। और जैसे वो ब्रिज है, ये जो एक नदी है, ये संसार जो है, जो शरीर की नदी है, जो पाप की नदी है, बहुत सारी चीज़ों की नदी है, उसको पार जो तुम्हें करना है ताकि तुम अनंत जीवन की कटनी काटो, वो कैसे काटोगे? उस यीशु मसीह नाम ब्रिज पर पूरी तरीके से जब तुम डिपेंड हो जाओगे, तो देखना कि जब उस जजमेंट सीट के सामने जब हम खड़े होंगे तो सच में प्रभु कहेगा, यस माय फेथफुल डॉटर, यस माय फेथफुल सर्वेंट, आई एम वेल प्लीज विद यू। ये संभव है अगर प्रभु यीशु मसीह पर हम पूरी तरीके से डिपेंड रहेंगे, तो हम धोखे में नहीं रहेंगे और तो सच में हम प्रभु को ठट्टों में नहीं उड़ाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम डेली अपने आप को एग्जामिन करें और कहें कि सच में प्रभु मैंने आज पूरे दिन जो किया, मैं सिर्फ अपने आप पर निर्भर थी, इसलिए जो कुछ मैंने प्रोड्यूस किया दैट वॉज डेड वर्क, बट प्रभु मैं आप पर निर्भर रहना चाहती हूँ ताकि जो कुछ भी मैं फल लाऊं प्रभु वो आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, और सच में वो एक सुखदायक सुगंध हो प्रभु जी, जो सच में प्रभु आपको भाए। और ये सब कुछ संभव है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वचन में लिखा है कि जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे तुम्हारे लिए होगा। और मैं सच में विश्वास करती हूँ कि वचन में जैसे लिखा है कि जो कार्य प्रभु ने हम में आरंभ किया प्रभु से ज़रूर पूरा करेगा, और मुझे विश्वास है कि प्रभु ही मेरे भीतर उस कार्य को पूरा करेगा। आमीन।
प्रेज गॉड। मैं ज़्यादा कुछ बांटना नहीं चाहता, बस मैं एक सोच बताना चाहता हूँ। लास्ट संडे जब वर्शिप हो गया तो संतोष नंगल ने एक बार एग्जाम्पल दिया था, उनके ऑफिस में एक मिंट का लीफ था जिसको क्रश करने से मिंट का स्मेल आया, राइट। तो वापस जब ट्रैवल कर रहा था तो आई वॉज थिंकिंग कि बहुत अच्छी बात है, मिंट का लीफ को क्रश करने से मिंट का स्मेल आया। तो आई वॉज क्रॉस थिंकिंग कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। देन आई वॉज थिंकिंग वाई इज एंड कि कॉकरोच को क्रश करने के बाद मिंट का स्मेल क्यों नहीं आता। इट गिव्स इज बैड स्मेल, राइट। When you crush something which has a good smell inside it, then a good smell comes out. So I was cross thinking with this with Christian life ka example ki we always pray ki crush God so that the fragrance come out and everything. I was like thinking like that. So I was thinking ki agar hum mein wo baat hai hi nahi and if God crushes us, will the sweet aroma comes out? As in Corinthians 2 verse 15, it says, you are the sweet smell of Christ to God. Tab aap prabhu God prabhu ke liye aap kya bolte ek aroma ho, sugandh ho. To aisa usme likha hai. So I was again thinking ki how could it be, like if today God crushes my life, like if God takes away my job, what smell I will give out? If today God takes my health, like I'm good. If tomorrow God decides to take something, give me something very struggleful, God tries to crush me with some troubles, what smell I will give out? If agar main meri baat karu to aaj ke din mein agar God, if he takes away my job or something, I will give a very bad smell. My smell will be of ego, my smell will be of the degrees I got, my smell will be of the experience I have, मतलब स्मेल विल बी ऑफ लाइक कि वाई गॉड, मतलब एक अलग गंदा सा स्मेल होगा मुझसे. देर विल बी नॉट फ्रैगनेंस. बट इफ आई कीप माई फ्रैगनेंस गुड इन माई क्रिस्टियन लाइफ, लाइक अगर मेरे खुद को मैं प्रेयर करके, सो आई वॉज अगेन सर्चिंग ऑन दिस कि मेरे को ना ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ता, तो आई डोंट नो कौन सा वर्स कहाँ है कहाँ है. सो आई कीप सर्चिंग ऑन गूगल कि अच्छा सेंड के ऊपर वर्सेस किधर है या फिर इसके ऊपर वर्सेस किधर है. सो आई गेट दिस आर्टिकल्स. सो देर वॉज दिस आर्टिकल बाई सम लेडी ऑन फोर अरोमास गॉड वुड लव. एंड देर वॉज, उसको मैंने जब पढ़ा तो बहुत सारे आर्टिकल्स है जिसमें अरोमास दैट गॉड विल लव, सेंस विच गॉड विल लव, ऐसा लिखा है. तो उसमें एक लेडी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, अरोमास गॉड विल लव आ प्रेयर, फॉरगिवनेस, सैल्वेशन एंड वन मोर वॉज देयर, लाइक फोर एग्जाम्पल शी वॉज गिवन. इट इज ब्यूटिफुली रिटन. तो मैं आप लोग को एक सोच के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि एट दिस मोमेंट ऑफ चर्च से निकलने के बाद, इफ गॉड डिजायर्स टू क्रश यू, व्हाट स्मेल यू विल गिव आउट.
Santosh Uncle is saying, don't adjust the mic, go and speak. Okay. So, बहुत अच्छा लगा सेविन भाई ने जो बताया. मेरे को जीजस ने क्रश किया तो खट्टा मीठा स्मेल आएगा. थोड़ा अच्छा थोड़ा गंदा. चॉकलेट कितने लोग को पसंद है चर्च में, मतलब यू ऐसे कॉमन क्वेश्चन. अगर अभी चॉकलेट दिया तो कौन कौन खाएगा? सब लोग खाएंगे. राजेश अंकल ने हाथ नहीं उठाया. नहीं खा सकते, चुपके से फिर भी खा लेते. चॉकलेट एक ऐसा चीज़ है जो 50 पैसा से लेके 1000 रुपीज़ तक हमको मिलता है, डिफरेंट फ्लेवर में, डिफरेंट क्वांटिटी में. किस और हर एक को अलग अलग टाइप का चॉकलेट पसंद है. किसी को वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, बहुत तरह का उसका वेराइटीज़ है. हम सबको मिलता है. हमें पता है चॉकलेट ज़्यादा खाने के बाद क्या होगा, दाँत खराब होगा, दाँत में दर्द होगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. डॉक्टर के पास जाएंगे और वाइट कोट में मस्त मास्क लगा के क्लीन करेगा और हमें बोलेगा कि फिर से चॉकलेट मत खाओ क्योंकि उससे दांत खराब होएंगे. सेम चीज़ जब हम कंपेयर करते हैं पाप से, सिन से, हमें पता है सिन करने के बाद क्या होगा. जीसस के पास हम जाते हैं, जीसस फुल वाइट एकदम चमकते रहते हैं, उनके पास जाते हैं, जीसस हमको क्लीन करते हैं और बाद में बोलते हैं फिर से सिन मत करना. लेकिन हम क्या करते हैं, अभी डायबिटिक जैसा पेशेंट हो गया है, एडिक्टेड है हम लोग स्वीट को, छुपके से कभी कभी खा लेते हैं, कोशिश करते हैं नहीं खाने का. लेकिन चॉकलेट ऐसा एक चीज़ है जहाँ हमें कभी भी किधर भी मिल सकता है, इजीली मिल सकता है, इजीली मिल. पीछे भी ऑरेंज चॉकलेट बट रहा था. तो ऑरेंज चॉकलेट है, मतलब हमको इजीली किधर से भी मिल सकता है. छोटे बच्चों को जैसे बड़े लोग दे देते हैं कि ये लो चॉकलेट खाओ या कुछ अच्छा हो गया चॉकलेट, जैसी चीज़ में हमारे फ्रेंड्स यूजली पाप हमें हमारा फ्रेंड्स लोग ज़्यादा, मेरा ऐसा सोचना है कि क्योंकि हम उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फ्रेंड्स, और वही हम लोग को ये चॉकलेट ज़्यादा खिलाते हैं. अरे चल यार कुछ नहीं होगा, ये ले एक चॉकलेट. झूठ बोल दे कुछ नहीं होगा, ये ले एक चॉकलेट, ऐसे करके. लेकिन हमें पता है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा. तो हमें यही कोशिश करना है कि वो चॉकलेट ना खाएं, हमें वो पाप नहीं करना है. और मेरे लाइफ में भी यही एक स्ट्रगल है कि मुझे पता है कि इसका इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी एक बहुत सारी जगहों पे मैं उसको, वो रिज़ल्ट को छोड़ के जो चॉकलेट का जो टेस्ट है, उसका जो मज़ा आएगा खाने का फ्लेवर, वो इन्जॉय करने के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ और मैं फिर उसको खा लेता हूँ. लेकिन अगर मैं ये सोचूँ कि उससे मेरा दांत ख़राब होएगा या उसके बाद मेरा क्या हाल होने वाला है, तो मैं शायद से उसको रोक सकूँ. और एक और चीज़ जो मैं सोच रहा था या मेरे लाइफ में, मतलब उस चीज़ के ऊपर करने के लिए सोच रहा हूँ कि एक गॉस्पल शेयरिंग, मैंने सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर कैसे हम शेयर करने का. रिसेंटली मैं अभी, मेरा एक छोटा सा नया जॉब लगा है, तो मैं एक प्रॉपर्टी पे था, तो उधर एक मैनेजर था, वो मेरे को बोलता है आप कहाँ के हो, आप मुंबई के हो? मैं हाँ मुंबई के हो. तो उसका स्लैंग थोड़ा मुंबई टाइप का, तो बोलता है अरे तुम लगते नहीं मुंबई के, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा है. तो मेरा अच्छा, मैं इन अंदर मैं सोच रहा था कि ये हम्बलनेस कहाँ से आया मैं जानता हूँ, लेकिन वो मुझे उसको शेयर करने के लिए नहीं हुआ. ऐसा दिमाग में आया कि हाँ शेयर करना है, इसको बता सकते हैं, लेकिन वो बताने के लिए नहीं हुआ. जीसस हमेशा बोलते हैं कि आप स्प्रेड करो. और फिर आज सुबह क्या हुआ, जब मैं नीचे गया था दूध लेने के लिए, तो दुकान वाला था, तो थोड़ा अपना काम कर रहा था। मैं उनको बोला भाई लेट हो रहा है, आप थोड़ा जल्दी दे दो। तो बोले आपको कहाँ जाना है? मैं बोला चर्च जाना है, लेट हो रहा है। तो पहले बोला चर्च, आप चर्च के जाके, आप राहुल, आपका नाम क्या? मैं बोला राहुल सिंह। तो बोला आप तो हिंदू हो? तो मैं बोला हाँ। तो मैं बोला आप यीशु जीसस को जानते हो? तो वो बोला कि नहीं, मैं यीशु और जीसस का नाम नहीं मालूम। फिर मैंने बोला चर्च पता है आपको? तो बोला हाँ मैं चर्च जानता हूँ। तो फिर मैं सोच रहा था ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको यीशु मसीह का नाम नहीं पता है, जीसस का नाम नहीं पता है, तो उनको बताना किसका काम है? हमारा काम है। तो ये मैं ऐसे फोर्सफुली या एकदम क्या बोलते हैं उसको, मैंडेटरी नहीं है कि सबको जाना है, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा हूँ। और अच्छी भी बात है ये, जाके हम किसी को अगर बताते हैं, यीशु का नाम बताते हैं, तो यीशु मसीह को लोग जानेंगे और बहुत सारे लोग उनका एक्सेप्ट करेंगे, तो अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि किसी एक की लाइफ बचेगी तो स्वर्ग में बहुत उसका सेलिब्रेशन होता है, तो अच्छी बात होगी ये।